औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम स्पेशल प्रोग्राम ईद उल फितर के हवाले, उसके साथ आपका मेज़बान सलमान हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले 2 अयाम से ईद उल फितर की खसूसी ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और आप कॉल भी करते हैं, हमारे प्रोग्राम की पसंदीदगी का इजहार भी करते हैं। काफ़ी टॉपिक्स जो हैं उनको हमने कवर करने की कोशिश की पिछले दिनों में। इंशाल्लाह आज भी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मुफस्सल गुफ्तगू हो पाए, जो कि यूके और यूरोप में मुसलमानों को जो मुश्किलात लाहक हैं, जिस तरह के चांद के मसले पे आज अहले बैत टीवी पे आपने काफ़ी मुफस्सल गुफ्तगू सुनी, तकरीबन 2.5 घंटे जो है वो चांद के हवाले से गुफ्तगू हुई। तो हसबे मामूल हमारे साथ आज मौजूद हैं ब्रदर ज़मीर अब्बास जाफरी साहिब, जो कि आप सब जानते हैं कि हौज़ा इल्मिया कुम में ज़ेर तालीम हैं और 2 महीने के लिए यूके में आए हुए हैं। तो हम इनसे इस्तफादा कर रहे हैं। हम ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हुए मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हम कराची से आगा नुसरत अब्बास बुखारी साहिब को भी ज्वाइन वो हमें करेंगे। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि कुम से एक और ब्रादर जो है वो हमें ज्वाइन करें, हौज़ा इल्मिया कुम से, जो कि हमें हौज़ा इल्मिया कुम के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में आगाह करें और किस किस्म की वो वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ हौज़े में वो अंजाम दे रहे हैं, उस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो आगा, सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहता हूँ, अस्सलामु अलैकुम।
वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया।
आगा, उम्मीद है कि आपके जो ईद उल फितर के अय्याम हैं, ये मुबारक अय्याम जो हैं वो अच्छे तरीके से गुजर रहे होंगे और मोमिनीन जो हैं उनके भी ये अय्याम जो हैं वो जिस तरह के खुदा ताला चाहता है उस तरीके से आप गुजारने की कोशिश कर रहे होंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, जिस तरह के आप पिछले अय्याम में भी हमें कॉल करते रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से आगाह कर सकते हैं कि आपने ईद उल फितर पे किस किस्म का दिन गुजारा, और इस एक्सपीरियंस को शेयर करके आप जो दूसरे लोग हैं, ऑडियंस है, जब आप ये एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करते हैं तो आपस में एक ऑडियंस का राबता कायम होता है। अगर कोई स्कॉटलैंड से कॉल करता है या वेल से, तो मोमिनीन का इसमें आपस में रब्त कायम होता है। तो आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी कॉल कर सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सबसे पहले तो ईद उल फितर के हवाले से जो है मुबारकबाद का जो सिलसिला शुरू हुआ हुआ है, काफ़ी लोग कॉल कर रहे हैं, मैसेजिंग कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस दफ़ा जो है आप तकरीबन काफ़ी अरसे बाद आपका ईद उल फितर पे जो है वो यूके आना हुआ, तो क्या माहौल फील कर रहे हैं बनिस्बत यूके और कुम में, क्या डिफरेंस महसूस कर रहे हैं ईद उल फितर के मौके पर आप?
जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मसलन कुछ ईदें हमने वहाँ पर ईद उल फितर की जो है कुम में भी गुजारी हैं, और उसके पहले हिंदुस्तान और फिर कुछ कभी यूके और कभी हिंदुस्तान में भी ईद उल फितर के मौके पर रहे हैं। ईद उल फितर के अय्याम में अगर आप वहाँ रहते हैं, कुम में रहते हैं या ईरान में रहते हैं, सबसे बड़ा अट्रैक्शन उस वक्त उसमें आयतुल्लाह खामेनाई की स्पीच होती है, क्योंकि वो ख़ुद इकामा करते हैं, इमामत करते हैं। बहुत सारे लोग तहरान, कुम से तहरान ट्रैवल करते हैं उनकी स्पीच को सुनने के लिए। ख़ुद कुम में भी, यानी जब हरम में नमाज होती है, तो वहाँ पर आयतुल्ला नासिर मकारिम शेराज़ी साहब, जब मैं था तो उन्होंने खुतबा वगैरह पढ़ा
कुम
था।
में जो मरकज़ी जो
जी
नमाज होती
जी
है,
मरकज़ी नमाज में खुद आयतुल्ला नासिर मकारिम शेराज़ी साहब वहाँ पर थे और उन्होंने नमाज़ पढ़ाई थी। तो वहाँ पर जो फ़िज़ा, वो रूहानियत की फ़िज़ा, के मसलन आप उलमा मराजे आपको नमाज़ पढ़ा रहे हैं, वो खुतबा दे रहे हैं, और वो तज़किए नफ्स की बात करते हैं, क्योंकि जो खुतबा होता है उसके पहले हिस्से में मसलन तकवा और तज़किए नफ्स की बात करना
बिल्कुल
ज़रूरी है। तो एक अजब एक अच्छा वो होता है कि मसलन वो लोग जो ये मरहले से गुज़र चुके हैं और वो रूहानी मरतबे पे फायज़ हैं, वो लोग आके हमें नसीहत करते हैं। क्योंकि फैमिली वहाँ नहीं होती है, ये तो इस वजह से थोड़ी सी एक मलाल भी होता है दिल में, कि मसलन क्योंकि ईद में दिल चाहता है कि इंसान अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारे। तो एक तरफ़ से एडवांटेज ये होता है, एक तरफ़ से खुशी ये होती है कि आप हज़रत मासूमा कुम के रोज़े में के बाज़ू में हैं, वहाँ पर आप ज़्यारत के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग मशहद जाते हैं ज़्यारत के लिए। तो एक ख़ुशी का फीलिंग होती है कि आप अहले बैत के घर में, अहले बैत के हरम में आपने ईद गुजारी। दूसरी तरफ से फैमिली के न होने का थोड़ा सी मलाल भी होता है। ख़ुद लंदन में यहाँ पर, क्योंकि हमारी फैमिली यहाँ पर गेट टुगेदर हुआ है, तो बहुत ही अच्छा रहा कि मसलन हमारी फैमिली का एक रीयूनियन यहाँ पर हुआ। हमारे भाई यहीं होते हैं, उनकी फैमिली, हमारी वालदा यहाँ पर अभी आई है, मौजूद है, तो एक गेट टुगेदर है हमारे तमाम बच्चों का, तो एक अच्छी फीलिंग वो हवाले से है। और ओवरऑल देखा जाए तो हमें कहा जाता है कि हम तालिबे इल्म में जहाँ रहें हमें अपने वजीफे पे तवज्जो करनी चाहिए। तो अगर कुम में भी हैं तो वहाँ भी वजीफ़ा है, हिंदुस्तान में तो वहाँ भी वजीफ़ा है, वहाँ पे भी ड्यूटीज़ हैं, और अगर यहाँ है तो यहाँ पर भी ड्यूटीज़ हैं। तो हम लोगों की तवज्जो हमेशा हमारी ड्यूटीज़ की तरफ रहनी चाहिए। और अहले बैत टीवी के शुक्र गुज़ार हैं कि अहले बैत टीवी ने एक प्लेटफॉर्म दिया जिसके ज़रिए से मसलन कुछ कुछ तालीमात अहले बैत को मोमिनीन तक पहुंचाने का मौका मिला। तो अहले बैत टीवी को का तहे दिल से शुक्र गुज़ार करते हैं, और आपका भी सलमान भाई, के आपने पूरे माह रमज़ान हम साथ रहे और आपने
बिल्कुल।
भी ताउन किया, और अच्छे
और
से हम लोग।
इसके हवाले से जो मेन हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे वो
जी
नाज़रीन का, कि
जी
जिन्होंने प्रोग्राम को पसंद
पसंद
किया
किया जी
और कॉल्स करके हमारी जो हौसला अफजाई करते थे कि काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स पेश किए, तो इसमें ऑडियंस को भी काफ़ी बड़ा क्रेडिट
जी
जाता है।
ऑडियंस का मेन क्रेडिट है, क्योंकि अगर हम
बिल्कुल
लोग टीवी बंद करके अकेले शो करते रहेंगे, मसलन बात मोमिनीन के लिए,
बिल्कुल
नाजरीन के लिए, तो मेन तो उनके लिए, और ख़ुद यानी उनको अगर हमें क्रिटिसिज्म से, अगर हमें क्रिटिसाइज़ करें या हमें अपने क्रिटिसिज्म भेजें, और हमें किस तरीके से हमारे इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए अगर वो भी भेजें, तो हम लोग शुक्रगुजार रहेंगे। तो अगर आपके जहन में कोई आइडियाज़ है, सजेशंस हैं कि इस प्रोग्राम को हम लोग और कैसे बेहतर कर सकते हैं, और क्या आपकी व्यूज़ है, तो आप अपनी व्यूज़ के साथ हमें व्यूज़ को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कॉल लाइन्स आपके लिए ओपन है, तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह के अय्याम, जो ये वीकेंड भी था ईद ईद के साथ, तो वीकेंड भी आपका अच्छा गुजरा होगा, आपने अपने फैमिलीज़ के साथ, रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजारा होगा, जो भी एक इबादत है और माह रमज़ान में, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह के आप गुनाहों से और मासियत से इस वीकेंड में अपने आप को आपने रुकाया होगा, जिस तरीके से माह रमज़ान में आपने अपने आप को गुनाहों से दूर रखा था, उसी तरीके से उम्मीद है कि इंशाल्लाह यही पाकीज़गी का सफ़र, रूहानियत का सफ़र आपका ईद में भी जारी रहा होगा, और इंशाल्लाह इस वीकेंड में, क्योंकि वीकेंड भी था और आज अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा था
बिल्कुल
बाहर,
बिल्कुल
तो पार्क में भी गए होंगे बहुत सारे लोग, और क्योंकि हमारी फैमिली खुद पार्क गई है, बहुत सारे लोग पार्क गए होंगे बच्चों को लेके, तो एक अच्छा, आज मौसम भी अच्छा था, वीकेंड भी है, ईद भी है, बहुत सारी चीज़ें साथ में जमा हो गई हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि मोमिन की खुशहाली वाकई दिल को सुरूर पहुंचाती है, तो इंशाल्लाह कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा रहा होगा, ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, और आपने रिश्तेदारों को भी ईद के लिए आप मिले होंगे, सिले रहमी की होगी, और इंशाल्लाह आप यहाँ पर भी कॉल करके अपने रिश्तेदारों को
बिल्कुल
ईद की मुबारकबाद पेश कर सकते हैं, और मौजूआत पे जो हम लोगों का डिस्कशन है उसमें शामिल भी हो सकते हैं। तो बस यही है कि हम लोग अगर देखें कि हम लोग अपने वजीफे पे हमेशा रहें, और मोमिनीन से भी यही गुजारिश है कि हम लोग हमेशा मुतवज्जे रहें कि हमारे वक्त के इमाम जिंदा हैं, और सबसे हकीकी तबरीक के जो लायक हैं वो अहले बैत के, वो अहले बैत हैं और वक्त के इमाम हैं। एक तरफ से हर मोमिन के दिल में ये मलाल भी होता है कि हम एक और ईद गुजर गई जब वक्त के इमाम का ज़हूर नहीं हुआ,
बिल्कुल
क्योंकि हम सब मुंतज़िर हैं कि वक्त के इमाम आएंगे, इंशाल्लाह एक दिन हम उनकी इकामत में और
बिल्कुल
उनकी इमामत में हम अपनी ईद को बजा लाएंगे। तो जहाँ पर हमारे खुशी का मासूमीन ने कहा है कि खुशी मनाए, वहाँ पर एक दिल में थोड़ा सा गम भी है कि कहाँ है वो जो आज जिसे आके हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों से बदला लेना है। तो हम इंशाल्लाह इन मुंतज़िर हैं अपने वक्त के इमाम के, कि इंशाल्लाह वो एक दिन आएंगे और उनके साथ हम लोग मिलकर ईद मनाएंगे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनकी 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 इमामत में हम लोग पूरी दुनिया में अदल व इंसाफ़ को कायम कर सकेंगे इंशाल्लाह।
बिल्कुल। अगर इसके हवाले से जिस तरह आपने रिश्तेदारों के हवाले से गुफ्तगू की कि ईद उल फितर के मौके पर हम किस तरह सिला रहमी
जी
और रिश्तेदारों से किस तरह हम ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं, अगर खुदा न खास्ता किसी से भूल चूक के दौरान रिश्तेदारों से अगर वो कतई रहमी कर बैठा है या कर बैठी है, तो किस तरह हम ईद उल फितर, हमें क्या पैगाम देती है, अहले बैत अलैहिस्सलाम क्या पैगाम देते
जी
हैं?
खुद हम लोगों ने, सलमान भाई, हम लोगों ने वसीयत इमाम अली अलैहिस्सलाम पढ़ी थी, उसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खुद ही फरमाया था, यानी हमारे लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि अय्यामे शहादत मौलाए कायनात बहुत ही नज़दीक गुजरा है, हम लोगों ने वसीयत भी लगाई थी, उसके अंदर मौला फरमाते हैं कि मसलन लोगों के दरमियान सुलह कराना नमाज और रोज़ों से ज़्यादा अफजल है,
बिल्कुल
यानी लोगों के दरमियान सुलह कराना नमाज और रोज़ों से ज़्यादा अफजल है। और अगर हम लोग देखें कि दूसरी तरफ से मासूमीन ने कई बार ताकीद की है, रिवायतों में है कि वो लोग जिन लोगों की इबादतें कबूल नहीं होती माह रमज़ान में, वो हैं जो एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए दिल में बुग्ज़ रखता हो, और दिल में किना रखता हो, और दिल में एक दूसरे के लिए एनिमिटी रखता होगा, ये मोमिन की नमाज़ों को कबूल नहीं होना है, ये मोमिन की इबादतों को कबूल नहीं होना है। तो ईद एक बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन वक्त है कि अगर हम लोग रिश्तेदारों के पास जाएं, हो सकता है कि अगर हमारे दिल में थोड़ी मुश्किलात भी रही हों, थोड़े प्रॉब्लम्स रहे हों, तो भी आप उसे भूलें। ईद का वक्त है, आप जाएं रिश्तेदारों के पास। अगर जा नहीं सकते तो एटलीस्ट कॉल करके आप मुबारकबाद पेश करें, ताकि वो रिश्ता जो थोड़ा सा उसके अंदर प्रॉब्लम शैतान के वजूद की वजह से आया, उसको हम अल्लाह की वजूद की वजह से, अल्लाह की रहमत की वजह से, और इस पाक महीने की वजह से, और इस पाक ईद उल फित्र की वजह से, हम उस उन मुश्किलात को हम ख़त्म कर सकें और रिश्तेदारों को, रिश्तेदारी को हम लोग मजबूत कर
दिल
सकें।
से आगा। इसके साथ
जी
हमारे साथ एक कॉलर मौजूद
जी
है, उनको स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम, ईद
वालेकुम
मुबारक।
अस्सलाम।
मैं
ईद
मुस्लिम
मुबारक
हाशिम बोल रहा हूँ लंदन से।
जी। कैसे हैं
जी
अंकल आप?
अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से
अंकल,
हूँ,
सबसे पहले तो
और
आपको ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ।
आपको भी बहुत बहुत मुबारक, और बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन को अहले बैत टीवी की मुबारक,
बिल्कुल
और मैं अपनी तरफ से और अपने जैसे और लोगों की तरफ से अहले बैत टीवी के एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम और इतनी उसकी टोन इतनी अच्छी आपके प्रोग्राम की रही है। और मुझे तो लग रहा है कि मेरा रमजान शायद अब जा रहा है, क्योंकि प्रोग्राम का मूड मिजाज कुछ ऐसा है कि जैसे एक अफसोसनाक हो गया थोड़ा सा। मुझे लग रहा है जैसा आप हमें अलविदा कह रहे हैं, तो मेरी दरख्वास्त है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो प्रोग्रामों में आपने मौजूदात रेज किए हैं, उनके ऊपर भी रेस्ट ऑफ द मंथ में एटलीस्ट एक एक प्रोग्राम किया जा सकता है। जैसा अभी सिले रहमी के ऊपर जमीर साहब ने कहा, और एक दफा फिर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और अहले बैत टीवी का, और आप लोगों के लिए दुआगो हूँ कि आप लोग पंजतन पाक के सदक़े में, मासूमीन के सदक़े में, इमाम ज़माना की रहनुमाई में ऐसे ही प्रोग्राम पेश करते रहे। वेरी वेल कनेक्टेड टू द करंट इश्यूज, और हमें लगता था कि इन्हीं प्रोग्रामों की, ऐसे ही प्रोग्रामों की हमें ज़रूरत रही इतने अरसे, जो हमारे करंट इश्यूज को शरीयत के दायरे में सॉल्व करें, या कम से कम उस तरफ हमें गाइड कर सकें। तो मेरी फिर से आपके लिए एक दफ़ा फिर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाबी दुनिया और आखिरत में नसीब
इलाही में।
करे। शुक्रिया।
अंकल अगर आप लाइन पे, तो आपसे एक सवाल करना चाहूँगा।
फरमाए।
अहले बैत टीवी के व्यूअर्स जो हैं, और तमाम जो मुसलमान यूके और यूरोप में बसते हैं, आप अपनी तरफ से उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे?
सबसे पहला और सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि जबानी हुसैनिया और अहले बैत से मोहब्बत का ऐलान ना करें, बल्कि अमली तौर पे करें। और अगर हम कोई और किस्म का तआवुन नहीं कर सकते, तो कम से कम जो तआवुन है वो ये है कि माली तआवुन करें।
बिल्कुल
ऐसा ना हो कि एक शख्स जो कि एक जानिब मंजिल रवा दवा है कारवां लेकर, वो तन्हा हो जाए और आने वाले जो लोग हैं उनकी भी हिम्मत ना हो एंड द मुस्तकबिल में कि वो ऐसा कोई काम शुरू कर सके। तो मेरी तमाम अपने जो व्यूअर्स हैं उनसे दरख्वास्त है कि देखिए, कल को इमाम ज़माने के सामने, कल को सैयद कौनैन के सामने जवाबदेह होंगे।
जी
ऐसा ना हो कि इतना अजीम शान इदारा हमारे हाथ से निकल जाए। तो
बिल्कुल
जो कुछ उन लोगों के हाथ में है, जिस तरह से भी मदद कर सकते हैं, उनको मदद करनी चाहिए और इसको ओन करना चाहिए।
जी
बस यही छोटे से हदीस अल्फाज है मेरे पास।
जी और ये भी चीज़ के आपकी बात से ही जोड़ते हुए कि मसलन जब हम वक्त के इमाम जिंदा हैं और उनकी ज़ेर नज़र में अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, तो हमारे ईद भी ऐसी गुजरनी चाहिए कि वक्त के इमाम अगर हमारे घर आते हैं, जब हमारे रिश्तेदार मसलन, हमारे घर का माहौल इस तरीके से होना चाहिए कि अगर वो हमारे घर में, हम उन्हें बुलाना चाहते हैं, तो हमारा घर का माहौल ऐसा हो कि हम उन्हें वेलकम करने के लायक हों। आप इस बारे
बिल्कुल
में? जी
बिल्कुल, मैंने कुछ अरसे पहले सैयद मुर्तजा जाजी साहब क़िबला का एक प्रोग्राम सुना था।
जी
उन्होंने कहा कि कल को अगर इमाम ज़माना आपके घर में आना चाहें, तो
जी
आपके घर का माहौल ऐसा पाक व पाकीज़ा होना चाहिए कि आपको शर्मिंदगी ना हो कि इमाम को बुलाएं, या घर में वो चीज़ें हो जो उनके लिए उनकी जिसमें
शान के
उनकी
मुताबिक ना
खुशनूदगी
हो।
हम दूर कर दें।
जी जी
अल्लाह,
बहुत बहुत
तो
शुक्रिया।
हमें अपने घरों को भी हर वक्त हमातन इस तरह तैयार रखना चाहिए अपने अलावा के पाक व पाकीज़ा माहौल होना चाहिए हमारे पास।
जी बहुत बहुत
बहुत
शुक्रिया
शुक्रिया अंकल कि आपने कॉल की। और
अलैकुम सलाम,
जिस
थैंक
तरह
यू।
आपने कहा कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात और मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है, उसको हम सबको अल्लाह ताला तौफीक दे के इन बातों को करने के साथ साथ, सुनने के साथ साथ हमें अमल करने की तौफीक दे, क्योंकि
जी
अमल के बगैर जो है वो ये
जी
कहना और सुनना
जी
मेरे ख्याल में बिल्कुल
और
फजूल है।
जी हाँ, और कुरान में भी इस तरफ मुतवज्जे कराया है हमें कि मसलन वो लोग जो सिर्फ बातें करते हैं, यानी हम लोग जो मुबल्लिग हैं उनके लिए ज़्यादातर ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हम लोग जब भी बात करते हैं सबसे ज़्यादा हम लोग अपने लिए करें कि हम लोग खुद उस पर पहले अमली तौर पर उसको अंजाम दें,
बिल्कुल
तो तासीर भी उसकी ज़्यादा होती है और लोग उसे ज़्यादा एक्सेप्ट भी करते हैं। वरना ये सिर्फ बातें हो जाती हैं और बातों का इतना असर नहीं होता है जब तक आप अमली तौर पर प्रैक्टिकली आप इस्लाम को प्रैक्टिस करके लोगों को बताएं। बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम लोग कम से कम जो अहले बैत की खिदमत कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम लोग कम से कम अहले बैत के कौल पर और अहले बैत की टीचिंग्स को प्रैक्टिकली अपनी सोसाइटी में अमल करें। जब हम अमल करेंगे तो लोग अहले बैत के करीब आएंगे। अगर हम कहेंगे कि अहले बैत ऐसा कहते थे खूब, तो सवाल ये उठता है कि अगर अहले बैत कहते थे तो आप क्यों नहीं अमल करते हैं? अगर हम चाहते हैं हम खुद नहीं अमल करें और दूसरे अमल करें तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमें अमली तौर पर अहले बैत के दीन को अपनाना पड़ेगा और ये यकीन के साथ, जो हम लोगों ने एक प्रोग्राम में पहले भी किया था सलमान भाई, कि अहले बैत ने जो राह बताई है वो वाकई इस दुनिया में और अगली दुनिया में दोनों दुनिया में सआदत बख्श है। जो हकीकी खुशी और हकीकी कामयाबी है वो सिर्फ एक ही राह में है, सिर्फ एक ही वे में है, वो रास्ता अहले बैत का रास्ता है। सिर्फ यही सिराते मुस्तकीम है। अगर हम समझते हैं दुनिया में कोई और रास्ते से अगर हम लोग कोई चीज़ हासिल कर सकते हैं तो ये यकीनन आप समझ लें कि मुमकिन नहीं है। अगर अहले बैत ने कहा है सच बोलो, सच में फलाह है, सच में इज्जत है, तो आप यकीन जाने कि अगर आपने सच बोला तो आप चाहे कोई भी फील्ड में आ जाए, बिजनेस में आ जाए, प्रोफेशन में आ जाए, आप हर चीज़ में जब आप सच बोलेंगे आपकी फलाह इस दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। बहुत सारे लोग सलमान भाई हम लोग देखते हैं कि मसलन मार्केटिंग का जॉब है। एक फ्रेंड थे हमारे, वो डिस्कस कर रहे थे कि देखें जमीर भाई मार्केटिंग का जॉब है, अगर नहीं कहेंगे तो नहीं सेल होगी। मैंने उनसे कहा नहीं होगी, आप मार्केटिंग टेक्निक सीखें लेकिन आप झूठ नहीं बोलें, आप मार्केटिंग टेक्निक सीखें, अच्छे से प्रेजेंट करें, अपनी प्रेजेंटेशन में डेवलपमेंट लाएं, लेकिन झूठ ना बोलें। क्यों
बिल्कुल
क्यों आप अपनी रिस्क को झूठ बोलकर हराम कर रहे हैं और वही रिस्क खा के फिर अहले बैत से आप कैसे मोहब्बत पे अमल कर सकते हैं? तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो अहले बैत ने तालीम दी है, देखिए आयतुल्ला बेहजत के पास बहुत सारे लोग आते थे, कहते थे मुझे कुछ तावीज़ दें, मुझे कुछ दुआएं दें ताकि मैं इसको आपकी दुआएं लेके मैं अपनी ज़िंदगी में फलाह पा सकूं। तो हमेशा वो आयतुल्ला बेहजत एक चीज़ की तरफ मुतवज्जे करते थे, वो कहते थे देखें आप नमाज़ पढ़ें और नमाज़ तवज्जो से पढ़ें। कहते थे अगर इससे बेहतर चीज़ कोई अगर और होती तो रसूल और अहले बैत हमें वो चीज़ सिखाते। आए रसूल और
सर
अहले बैत ने हमें नमाज़ नहीं सिखाई है, आप नमाज़ पढ़ें तवज्जो से पढ़ें। दो काम कहते थे हमेशा करें। कहते थे आयतुल्ला बेहजत कि अगर आप रूहानी तरक्की चाहते हैं तो आप हर वाजिबात पे अमल करें, हर हराम से परहेज़ करें, ये पहला स्टेप है। अगर किसी ने ये सोच रखा है कि मैं कोई भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हासिल कर सकता हूँ सिवाय ये दो काम करे बगैर, वाजिबात पे अमल किए और हराम से परहेज़ करे, ये दो काम के बगैर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पॉसिबल
बिल्कुल
नहीं है।
मुमकिन नहीं है।
तो ये हम लोगों को सबको इस चीज़ का एहसास करना
और अभी
चाहिए।
भी हम नमाज़े मगरिब की अज़ान की तरफ बढ़
जी
रहे हैं तो वो भी एक वाजिबात में से शामिल है। तो तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि आप अज़ान सुनें और उसके बाद नमाज़े मगरिबैन को अदा करें। इंशाल्लाह आपसे नमाज़े मगरिबैन के बाद एक छोटी सी न्यूज़ का वक्त होगा और न्यूज़ के फ़ौरन बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। आप कॉल कर सकते हैं हमें, हमारा जो टॉपिक हमें ज्वाइन करेंगे कराची से आगा नुसरत अब्बास बुखारी साहब। न्यूज़ ब्रेक के बाद तो देखते रहिए हमारे साथ ये प्रोग्राम।